Yasmin yuto yahi. Yasmin yuto yahi.
Yasmin yuto yahi.
Yena chayasya yasma. Yena chayasya yasma. Yasma yuta yat. Just repeat what I say. Just repeat what I say.
Maharaj,
yes, my Yatayan.
Yes, my Kapara.
Udayas.
Udayas.
Kaparaha.
Kaparaha.
Parova.
Parova.
Bhava Karoti.
Bhava Karoti.
Vikaroti Pritak.
Vikaroti Pritak.
Svabhavaha.
Svabhavaha.
Sanchoditastan.
Sanchoditastan.
Ikalam.
Ikalam.
Bhavata Swarupa.
Bhavata Swarupa.
Yasmin Yato Yari.
Yasmin Yato Yari.
And we'll do the whole one. We'll do a whole section at a time. Yasya yato yari inacha yasya yasma.
Yasmin yato yari inacha yasya yasma.
Yasmin yato yari inacha yasya yasma.
Yasmin yato yari inacha yasya yasma.
Yasma yata yat utayas tapara parova.
Yasma yata yadu yat tapara parova.
Bhava Karoti Vikaroti Pritak Svabhavaha.
Bhava Karoti Vikaroti Pritak Svabhavaha.
Sanchoditastat Akhilam Bhavata Swarupa.
Sanchoditastat Akhilam Bhavata Swarupa.
Yasmin yato yari inacha yasya yasma.
Yasmin yato yari inacha yasya yasma.
Yasma yata yat udayas para parova.
Yasma yata yad udayas para parova.
Bhava karoti vikaroti pritak svabhavaha.
Bhava karoti vikaroti pritak svabhavaha.
Translation.
Anuvad.
Might as well read directly. Read directly from the Hindi.
Shabdat. Yasmin. Jivan ki
kisi. No, not word for word. The translation.
Anuvad. Hey Prabhu, is bhautik jagat mein pratyek vyakti सतो रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। अतः इस भौतिक जगत में सारे व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत हैं। वे जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निस्संदेह शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न होते हैं, वे सब आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की, कोई चाहे अपने माता पिता द्वारा या सरकार द्वारा अथवा किसी स्थान या किसी अन्य कारण से अपने को रक्षित माने, यह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियों के कारण है। जो कुछ भी किया जाता है, वह चाहे उच्च लोक में हो, मध्य लोक में हो, अधोलोक में क्यों ना किया जाए, वह परमेश्वर के अधीक्षण या नियंत्रण के कारण होता है। अतः यह कहा जाता है, कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देवोपपत्तये, जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये सारी प्रवृत्तियां कर्मशील व्यक्ति के लिए कृष्ण द्वारा प्रदत्त सुविधाएं मात्र हैं। अतः भगवत गीता का कथन है, मत्तः स्थितिर ज्ञानम अपोहनम च, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रेरणा के अनुसार ही कार्य करता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जीवन लक्ष्य होता है, अतः वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा पथ प्रदर्शित होकर भिन्न भिन्न ढंग से कर्म करता है। यस्मिन यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् से सूचित होता है कि सारे कर्म चाहे वे जैसे भी हो, पूर्ण पुरुषोत्तम के विभिन्न स्वरूप ही हैं। वे सब जीव द्वारा उत्पन्न हैं और भगवत कृपा से ही पूर्ण होते हैं। यद्यपि ऐसे समस्त कर्म भगवान से अभिन्न हैं, तो भी भगवान निर्देश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अन्य सारे कर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। जब हम भगवान के इस आदेश को स्वीकार करते हैं तो हम वास्तव में सुखी बन सकते हैं, किंतु जब तक हम अपनी भौतिक इंद्रियों के अनुसार कर्म करते हैं तब तक हम भौतिक जीवन में बने रहते हैं, किंतु ज्यों ही हम भगवान के वास्तविक दिव्य आदेश के अनुसार कर्म करते हैं त्यों ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त होते हैं। भक्ति के कार्यकलाप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष अधीन है। नारद पंचरात्र का कथन है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। जब मनुष्य भौतिक उपाधियों को त्याग कर भगवान के अधीन होकर कर्म करता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन का पुनः संचार होता है। इसे स्वरूपेन अवस्थिति कहा जाता है, जिसका अर्थ है अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। यह मुक्ति की असली परिभाषा है।
गुरु परंपरा प्रणाम प्लीज।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सर्वपदे देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम अंजनावस्ति मिरादस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं हंसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
नारायण नमस्कृत्य।
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुद्रं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी.
Actually, this verse of the Srimad Bhagavatam was a very heavy shloka.
वास्तव में श्रीमद् भागवतम का यह श्लोक बहुत ही भारी है.
For everyone is under the modes of material nature in this material world.
सभी व्यक्ति भौतिक जगत में भौतिक गुणों के अधीन हैं.
That's very basic.
ये बहुत ही मूलभूत है.
But the next sentence is not so basic.
पर इसका जो अगला वाक्य है वो इतना मूलभूत नहीं है.
Because in the next sentence, Prahlad Maharaj says, everyone from the greatest personality, Lord Brahma, down to the small ant, works under the influence of these modes. Now that's a heavy statement.
क्योंकि अगले वाक्य में प्रहलाद महाराज कहते हैं सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक शूद्र जीवी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं. तो ये बहुत ही भारी वाक्य है.
Lord Brahma, of course, is the CEO of the universe.
वास्तव में ब्रह्मा जी इस पूरे के पूरे जगत के सीईओ हैं.
But here Prahlad Maharaj is saying that he's under the modes of material nature.
परंतु यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि वो भौतिक गुणों के अधीन है.
But we have to be a little careful here. Careful.
पर हमें यहाँ पे कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है.
There are Deshakala Patra considerations about this statement that Lord Brahma is under the modes of material nature.
क्योंकि इस वाक्य के बारे में देशकाल पात्र के को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता पड़ती है. आप में से कितने भक्तों को देशकाल पात्र के बारे में जानकारी है?
If you read in Prabhupada's books, you will learn these important terms. These are not small, insignificant languages. Deshakala Patra is a very important concept. You write
यदि,
it down.
यदि आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आप इन सभी प्रकार के शब्दों का बारे में जान पाएंगे. ये छोटे छोटे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं.
Time, place, and circumstance.
देश काल और पात्र.
Srila Prabhupada was asked about this position of Lord Brahma. Prabhupada was asked about the position or the status of Lord Brahma.
Srila Prabhupada ji ke se bhi ye prashn pucha gaya tha ki Brahma ji ki kya sthiti hai.
The point of this shloka is that Lord Brahma is not always a pure devotee.
इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त नहीं है.
Sometimes he's a pure devotee, sometimes not.
कहीं पे ये होता है कि वे शुद्ध भक्त होते हैं और कभी ये होता है कि वे शुद्ध भक्त नहीं है.
Our present Lord Brahma, who is head of this universe, is counted as a pure devotee.
अभी आज के समय में जो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं वो शुद्ध भक्त हैं.
It is he who is requested by Lord Sri Krishna himself to descend as Haridas Thakur. So how could he not be a pure devotee?
क्योंकि उनको हरिदास ठाकुर जी के रूप में अवतार लेने के लिए भगवान ने आग्रह किया था.
But there are complexities. It's not a simple understanding the position of Lord Brahma and his actions is not so easy.
पर वास्तव में ब्रह्मा जी की स्थिति को समझना ये बहुत आसान नहीं है. इसमें बहुत ही अटकल है.
The same Lord Brahma, only 5,000 years ago, became bewildered by Maya.
क्योंकि यही ब्रह्मा जी 5,000 वर्ष पूर्व माया द्वारा विमोहित हो गए थे.
The only question remaining is, what kind of maya did he become covered by?
तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की माया द्वारा वे आच्छादित हुए?
It appears that he became covered by a combination of महामाया एंड योग माया
ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी दोनों महामाया तथा योग माया के मिश्रण से आच्छादित हुए थे
He was subject to false ego and pride.
वो झूठे अहंकार से प्रभावित थे
In the famous Brahma Mahotsava Lila 5000 years ago when Krishna was on the planet.
प्रसिद्ध ब्रह्म विमोहन लीला जब भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व उपस्थित थे तब ये लीला हुई थी
In the time period of Lord Brahma 5000 years ago was nothing.
ब्रह्मा जी के समय के अनुसार 5000 वर्ष कुछ भी नहीं माने जाते
So in the past time Brahma Mahotsava Lila It appears that he had some false ego involved, which is Mahamaya.
Brahma Vimohan Lila में ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी झूठे अहंकार से प्रभावित हैं, तो ये महामाया है।
Some pride, he became puffed up.
कुछ गर्व जिससे वे फूल गए।
So an unwise devotee, actually, pure devotee who is Beyond the modes of material nature, can't become puffed up by false ego. It's not an option. It's not available because they are beyond.
जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं, तो वो सारे प्रकृति के गुणों से परे हैं, तो वो झूठे अहंकार से प्रभावित नहीं हो सकते थे.
But Lord Brahma became puffed up because when he saw little Krishna taking. Prasad out of the mouth of his cowherd boyfriends and then putting it into his own mouth and then he had a big doubt.
परंतु जब उन्होंने देखा कि भगवान बाल कृष्ण अपने ग्वाल बालों के मुख में से प्रसाद लेके अपने मुंह में डाल रहे हैं तो उनके हृदय में कुछ संशय उत्पन्न हो गया.
How can this be my almighty Vishnu? He had some intellectual idea that this little Krishna, this little boy running around in Vrindavan Playing with cows and praying his friends. He only had an intellectual conception that this is the same non-different personality as his worshipable Almighty Vishnu. But that concept was only intellectual. That's the defect.
ब्रह्मा जी को ये केवल बुद्धि के स्तर पे ही समझ में आ रहा था कि ये जो बाल कृष्ण हैं, ये वास्तव में वही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं जो मेरे द्वारा पूजित हैं। परंतु ये बुद्धि के स्तर पर उनको समझ में आ रहा था इसलिए कुछ इसमें कमी थी
This is the difference between vigyan and gyan.
ये ज्ञान और विज्ञान के बीच का फर्क है
ज्ञान means knowledge so Lord Brahma had knowledge that this little boy in Vrindavan was carrying out pastimes as a little boy but actually that it was Lord Vishnu so He had knowledge of this fact.
ब्रह्मा जी को इस बात का ज्ञान था कि जो ये भगवान बाल कृष्ण हैं ये अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं वृंदावन में और ये परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं।
So that's ज्ञान।
तो ये ज्ञान है।
But what was missing was the विज्ञान।
पर जो चीज की कमी थी वो था विज्ञान। विज्ञान की कमी थी।
विज्ञान means the practical application of the knowledge or It can also mean revelation.
विज्ञान का मतलब है व्यावहारिक जीवन में जो ज्ञान है उसको लगाना या फिर साक्षात्कार।
Realized knowledge versus theoretical knowledge. Try to understand this distinction. There, on the one hand, is theoretical knowledge, intellectual knowledge. On the other hand, is realized knowledge. There's a massive difference. Try to understand.
इसको समझना होगा कि एक हाथ एक ओर है सिर्फ शुष्क ज्ञान और दूसरी ओर है व्यावहारिक रूप से साक्षात्कार प्राप्त ज्ञान तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है
It appears that Lord Brahma was covered by Mahamaya that he could not understand that this little boy having fun in Vrindavan with intimate pastimes with his cowherd boys that He was the Almighty Vishnu. Only in theory could understand that, but the vigyan was missing. The realization was missing. He couldn't understand. You see, he was bewildered.
ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी महामाया से प्रभावित हैं और यद्यपि उनको ये ज्ञान तो है कि ये बाल कृष्ण हैं, ये परम भगवान विष्णु हैं और अपनी लीलाएं कर रहे हैं वृंदावन में लेकिन क्योंकि विज्ञान की कमी है साक्षात्कार की कमी है इसलिए मोहित हो गए
This pastime is complicated. From the scientific analysis, what happened? How did Lord Brahma get it covered over? You can't just snap your fingers on this one. You know, it's complicated, it's deep.
ये जो लीला है ये बहुत ही गहरी है और इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है कि कैसे ब्रह्मा जी विमोहित हो गए. हम इसमें कोई एकदम से निर्णय नहीं निकाल सकते.
It appears that Lord Brahma was covered by Yoga Maya and Mahamaya at the same time.
ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी योग माया और महामाया दोनों के द्वारा ही आच्छादित थे एक ही समय पर.
Mahamaya means the material energy.
महामाया का मतलब होता है भौतिक शक्ति.
You're knowing that?
क्या ये जानते हैं आप?
No, so write it down.
तो आप
महामाया means the material energy.
महामाया का मतलब है भौतिक शक्ति.
So it appears that Lord Brahma was under the influence of the material energy because he had false pride and false ego.
ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी भौतिक शक्ति द्वारा प्रभावित थे क्योंकि उन्हें झूठा अहंकार था.
But at the same time, I mean, after all, he's the same Lord Brahma who's the head of our sampradaya.
और लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो वही ब्रह्मा जी हैं जो हमारे पूरे संप्रदाय के मुखिया हैं.
We are called the Brahma Madhava Gaudiya Vaishnav Sampradaya. This is why I'm saying you can't just snap your fingers and understand this point.
क्योंकि हमारे संप्रदाय का नाम ही है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय. इसलिए हम इसमें बहुत जल्दी से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते.
So he became covered then by illusion. He became bewildered by the influence of Mahamaya and Yoga. Mahamaya because it was false ego person. Yoga Maya because it was the plan of the Lord.
तो दोनों ही माया द्वारा महामाया तथा योग माया द्वारा वे प्रभावित थे. महामाया से इसलिए क्योंकि वे झूठे अहंकार से प्रभावित थे और योग माया से इसलिए क्योंकि यह भगवान का ही एक योजना थी.
By his will, by the will of the Lord, he wanted to prove what was Lord Brahma's subordinate position.
क्योंकि भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी का जो शरणागत स्थिति है उसे उसके बारे उसको बताना चाहते थे.
In the Krishna book alone, which is the summary of the 10th canto,
कृष्णा पुस्तक में जो कि दसवें स्कंद का एक समरी है,
लीला शक्ति देवी, who is the pastime potency of the Lord,
जो भगवान की लीलाओं की शक्ति है.
Under Lalini Shakti or somehow other expansion of Srimati Radharani's energy, because it's in Lila Shakti means internal potency, because the Lord of course cannot be under Mahamaya or material energy.
तो ये लीला शक्ति राधा रानी जो अलादिनी शक्ति हैं उनके ही एक विस्तार है क्योंकि भगवान महामाया के प्रभाव में कभी नहीं आते इसलिए वो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में ही होते हैं.
So Lila Shakti is a transcendental energy, expansion of Radhika, who is the internal potency.
तो लीला शक्ति राधा रानी के एक विस्तार हैं जो कि अंतरंगा शक्ति हैं.
This is a very important point.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है.
Lila Shakti is the script writer. She writes the pastimes.
लीला शक्ति भगवान की लीलाओं का लिखती
हैं. Krishna is described as a dancing actor.
भगवान को डांस नर्तक बताया गया.
He is simply playing out the pastimes that are written by Lila Shakti.
वो केवल उन लीलाओं का उन नाटक के रूप से करते हैं जो कि लीला शक्ति लिखती
है. So again we see the power of the influence of Srimati Radharani over Krishna, because ultimately she is, you could say, we say in America, calling the shots. You know, Lila Shakti is writing the script of what Krishna does. Every pastime that he engages in is written by this Lila Shakti, who is the expansion of Radhika.
तो हम यहाँ पे राधा रानी की जो महानता है और उनका प्रभाव देख सकते हैं कि राधा रानी के एक विस्तार लीला शक्ति द्वारा जो लिखा जाता है कृष्ण वही लीला करते हैं. तो एक तरह से उनका प्रभाव देखा जा सकता है।
So we have to understand that both are there because in the details of the pastime of how Lord Brahma stole the cows. He wanted to test Krishna. So this was a kind of false ego.
तो हम इस जो ब्रह्मा विमोहन लीला का ये जो लीला है इसमें ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की परीक्षा लेना चाह रहे थे तो ये एक प्रकार का झूठा है कार था।
He should have known and been satisfied that little Krishna, the little blue boy, was the self same Almighty Lord Vishnu. He should have been satisfied with that knowledge, but no, he was not satisfied.
तो उनको वास्तव में तो इस ज्ञान से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए था कि जो बाल कृष्ण है वो ही परम पुरुषोत्तम भगवान है लेकिन वो नहीं थे संतुष्ट।
He wanted to test Krishna.
तो वो भगवान कृष्ण
pure devotees of the Lord don't really test Krishna, you know. So this is where the Mahamaya comes in.
तो वो भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेना चाहते थे लेकिन हम जानते हैं कि शुद्ध भगवान की कोई परीक्षा नहीं लेते तो यहाँ पे महामाया द्वारा प्रभाव दिखता है।
So his logic was, if this little boy in Vrindavan is actually my self saying my almighty worshipable Lord Vishnu, then if I steal his cows and coward boyfriends, if I steal them and take them away, then that little boy, if he's actually Lord Vishnu, he'll have be forced to use his mystic power to do something wonderful if he's actually the Supreme Personality of Godhead. If he's not, then he won't be able to do anything. So this is really puffed up mentality actually.
तो ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि अगर इस बाल कृष्ण वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है जिनकी मैं पूजा करता हूँ तो फिर ये अगर मैं इनके ग्वाल बालों को और गौओं को या बछड़ों को चुराऊंगा तो ये कोई योग शक्ति द्वारा मेरे को रोक लेंगे और अगर नहीं रोक पाए तो समझ जाऊंगा तो ये वास्तव में एक प्रकार का झूठा अहंकार है।
But the result of this maneuver, you know, maneuver, the result of this action by Lord Brahma, he made a complete and total ass out of himself.
और ऐसा इस प्रकार का कार्य करके ब्रह्मा जी ने अपने आप को बहुत ही भगवान की नजरों में गिरा लिया।
Because little Krishna, the little boy who was accepting prasadam from the mouth of his friends, that little boy indeed did show his supreme mystic power and made a complete fool out of Lord Brahma by his demonstration of his super mystic power. Then Lord Brahma was exposed as being a complete fool.
क्योंकि जो बाल कृष्ण थे उन्होंने वास्तव में ब्रह्मा जी को अपनी बहुत ही महान योग शक्ति दिखाई जिससे कि ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से एक मूर्ख प्रतीत हो रहे थे।
You following, sir?
क्या आप उसको समझ पाए?
Are you understanding?
क्या आप समझ पा रहे हैं?
You. Ask him. Is he understanding?
क्या हाँ जी yes महाराज।
Because you have to be fully attentive if you're going to understand. This is a deep pastime. It's not easy to understand.
क्योंकि इसको समझने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। ये बहुत ही मुश्किल लीला है। तो इसमें बहुत गहराई है। तो आपको ध्यान से सुनना होगा।
I'm giving a confidential explanation.
और महाराज बहुत ही गुहे विस्तरण दे रहे हैं। तो हमें इसको बहुत ध्यान सुनना चाहिए।
Light is given in this. This complex pastime, light is given in the purports by the great Acharya Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. He gives a most detailed explanation of this pastime.
इस ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में जो विस्तार से हमारे बहुत महान आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने खुलासा किया है वो बहुत ही विस्तार से समझाते हैं।
That using his mystic power, Krishna, there were actually three sets of coward boys and cows. Three sets by the mystic power of Krishna.
भगवान कृष्ण की योग शक्ति द्वारा ग्वाल वालों और बछड़ों के तीन समूह बने थे।
There was his original set that he was playing with when Lord Brahma interrupted by stealing the coward boys and cows and putting them in a cave. Which was rather demoniac if you think about it.
एक वास्तव में जो पहला समूह था जिसके साथ भगवान कृष्ण खेल रहे थे वो था, और ब्रह्मा जी ने उनको चुरा कर एक गुफा में डाल दिया, तो ये वास्तव में एक प्रकार का आसुरी कार्य किया।
They were locked in the cave for one whole year of Earth time. So that action was actually demoniac.
उनको पूरे एक वर्ष के लिए, जो धरती का एक वर्ष है, उसके लिए गुहा बंद कर दिया गया। तो ये वास्तव में आसुरी कार्य है।
But Thakur explains that it was a false set of cows and cowherd boys, a false set, a Maya set, created by Krishna's mystic energy that were locked into the cave. Because such a disaster and such imprisonment and such discomfort and so forth could never be imposed on Krishna's personal friends. So it was a Maya set. It was an illusionary set of cows and cowherd boys. And Lord Brahma never actually, the real cowherd boys and cows were still playing with Krishna elsewhere. So Lord Brahma didn't actually not put them into a cave. He couldn't do that.
तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं कि एक माया समूह बनाया बाल बालकों और बच्चों का भगवान ने, जिसको ब्रह्मा जी ने उस गुफा में कैद किया, क्योंकि भगवान कृष्ण के जो व्यक्तिगत मित्र हैं उन पे इस प्रकार का कष्ट नहीं डाला जा सकता कभी भी, इसलिए वो एक माया समूह था।
So in one realm, Krishna has real coward boys. They're playing and carrying out their pastimes undisturbed by this mission of Lord Brahma.
तो एक और हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के जो व्यक्तिगत उनके मित्र हैं, वो वास्तव में भगवान के साथ खेल रहे हैं, और उनको ब्रह्मा जी द्वारा कोई भी समस्या नहीं हुई उनके इस कार्य से।
That's the first set of cows and cowherd boys, and the second set we've already explained was a fake set.
तो ये
look-alike.
तो पहला समूह था जो खेल रहे थे, और दूसरा समूह था वो एक प्रकार से माया समूह था, वो एक फेक।
Manufactured by Krishna's yoga maya, and they so that his real friends could not be subject to that kind of demoniac punishment of being locked in a cave for a year. His friends and cows could not be subject to that. Therefore, it was only an illusory set that was locked in the cave.
तो ये जो गुफा में बंद किए गए जो ग्वाल बाल और बछड़े थे वो एक माया के द्वारा बनाए गए थे, वो वास्तविक नहीं थे। तो क्योंकि भगवान के वास्तविक मित्रों को इतना कष्टदायक स्थिति में कभी नहीं डाला जा सकता।
And the third set were expansions of Krishna himself.
और जो तीसरा समूह था वो वास्तव में परम भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार थे।
Krishna personally became the cows, he personally became the cowherd boys. This is clearly explained in the Krishna book, how the affection of the mothers increased so much, and how the affection of the cows for their calves increased so much, because they brought out their love for Krishna, because the cows and calves were not the originals. They were set created by Krishna's yoga maya.
और तीसरा समूह परम भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार थे, जो कि उन्होंने ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में किए थे, क्योंकि ये कृष्णा पुस्तक में प्रभुपाद जी ने बहुत ही विस्तार से समझाया है, और हम देखते हैं कि जितनी भी गोपियां थी, माताएं थी, उनका प्रेम अपने बच्चों के प्रति, और जितनी भी गौएं थी उनका अपने बछड़ों के प्रति प्रेम बहुत बढ़ गया जितना वे कृष्ण से करती थी, क्योंकि ये वास्तविक बछड़े और ग्वाल बाल नहीं थे बल्कि कृष्ण के ही विस्तार थे।
You understanding? There were three sets. So Krishna book explains clearly that this seemingly unexplainable sudden massive increase of love and affection by the mothers for their sons of the cows for their calves. A massive increase of love and affection, because actually they were in a relationship with Krishna, who was disguised as cowards and coward boys, Krishna in disguise. So therefore their love for Krishna came out, and they didn't know, again due to Yoga Maya, they did not know that their sons and the cows and the gower boys did that, that they were duplicates. The residents of Braj were not able to understand that.
तो कृष्णा पुस्तक में ये बताया गया है कि जब माताएं और गौओं ने ग्वाल वालों और बच्चों को मिलते थे तो उनका प्रेम बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ गया. उनका जो कृष्ण के लिए प्रेम था वो प्रकट होने लगा, क्योंकि वास्तव में वो ग्वाल बाल और बछड़े परम भगवान कृष्ण ही थे, जो कि उन ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे थे. तो इसीलिए उनका प्रेम इतना प्रकट हो रहा था इतना ज्यादा, और परंतु योग माया के प्रभाव से उनको ये पता भी नहीं चल पाया कि ऐसा हो रहा है उनके साथ.
Lord Brahma, as the CEO of the universe, of course, obviously he's very intelligent.
जो भगवान ब्रह्मा है वो भी, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड के CEO है, वो वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान है.
By observing this demonstration of Krishna's mystic energy, then Lord Brahma could understand exactly what had happened, you see. Others could not understand, but Lord Brahma, he could understand what had happened, and then he was extremely embarrassed.
भगवान कृष्ण के इस प्रकार की योग शक्ति के प्रदर्शन से ब्रह्मा जी समझ गए कि क्या हुआ है. दूसरों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ब्रह्मा जी समझ गए, और इसको समझने के बाद वो बहुत ही अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगे.
Became almost frightened because I realized, oh my God, how did I dare to mess with the Supreme Personality of Godhead and his intimate friends? How could I make such a blunder? My God, this is Mahaparad, you know. Then he realized, oh my God, I shouldn't have done this. This was a super mistake. I shouldn't have done this. Now I've done Mahaparad.
तो ब्रह्मा जी केवल शर्मिंदा ही नहीं हुए, पर वो एक प्रकार से भयभीत हो गए कि ये मैंने कैसे कर दिया, कि जो परम पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों में मैंने दखलंदाजी की, और उनके जो सबसे व्यक्तिगत समीप के मित्र हैं उनके साथ छेड़खानी की, ये बहुत ही बड़ा अपराध मैंने कर दिया और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था. उनको इस प्रकार से भय लगने लगा.
So when you see the picture of Lord Brahma, immediately comes down from his swan plane, offers his dandavat pranams to Krishna, and you look at the paintings of Lord Brahma, you see that tears are coming from his eyes because he realized, oh my God, please forgive me, I have made this super Mahaparad, now it was really a stupid thing for me to have done, you know. So then he's regretting, and then tears are coming in his eyes. You have seen the painting.
तो ब्रह्मा जी अपने स्वान जो जो उनके हंस वाहन थे उससे उतर के आए, और भगवान कृष्ण को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, और उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे कि मेरे से बहुत बड़ा महा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए. तो इस प्रकार से वो बहुत ही अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं. तो इसकी जो फोटोज हैं ये हमारे कृष्ण पुस्तक में आप देख सकते हैं.
Of course, Lord Brahma became purified by that pastime because he was stripped down, so to speak. Krishna just wiped off his false ego by exposing him as a fool, you know. The big, big shot, you know, you can imagine. I mean, in this world, if somebody's the CEO, let's say the CEO of Birla Cement Company or something, so naturally there has to be a lot of pride and false ego that goes along with that.
निश्चित रूप से इस लीला द्वारा ब्रह्मा जी का बहुत ही शुद्धिकरण हुआ, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण ने उनके झूठे अहंकार को बिल्कुल काट दिया और उनको बिल्कुल जमीन पे ले आए. तो महाराज बता रहे हैं कि वो तो पूरे ब्रह्मांड के सीईओ हैं, तो उनमें थोड़ा झूठा अहंकार का प्रभाव था, लेकिन अब देख सकते हैं कि अगर कोई बिरला सीमेंट कंपनी का ही सीईओ होगा तो उसको भी कितना झूठा अहंकार होगा.
So this pastime stripped away his false ego and pride completely and caused him to feel very humble because he realized, I should not mess with the Supreme Personality of Godhead, I have done wrong. And that's why the painting shows tears coming from the eyes of a Brahmavikas, he realizes, oh my worshipful Lord Krishna, sorry, please forgive me, I made a huge blunder.
इस लीला से ब्रह्मा जी के झूठे अहंकार को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण ने मिटा दिया और इससे वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, प्रायश्चित उनको लग रहा था, तो वे अश्रु उनके आंखों से निकल रहे थे और वो बहुत ही विनम्र हो गए और भगवान कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं।
Now Lord Brahma was asking, he was reciting very elaborate prayers which are given in the Krishna book, begging forgiveness for his blunder. And Krishna is standing there, little Krishna is standing in front of him while Lord Brahma is reciting these elaborate prayers.
Brahma ji, Bhagwan Krishna se shama yachna karte hue, bahut hi vistar se prarthnaye karte hain aur shama yachna karte hain. Aur Bhagwan Bal Krishna wahan pe khade hain aur unko apni prarthna arpit karte hain.
But it is significant. When Lord Brahma was offering these prayers, the English word is supplication, you know the word surrender, prayers of surrender and begging for forgiveness and so forth. And when Lord Brahma was doing this, it's described that Krishna was standing there motionless, just like a statue.
So, ऐसा बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी अपना शरणागति और क्षमा याचना की बहुत ही विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं तो वहां पर बाल कृष्ण खड़े तो हैं लेकिन एक एक निष्क्रिय मूर्ति के समान खड़े हैं।
So again Lord Brahma became bewildered because he sees Krishna standing like a statue, completely non-reactive. He's offering all these prayers, hoping to get forgiveness. You know, a pat on the head, so to speak, that's okay, you know. Yeah, that's okay, you know, I forgive you. He's hoping to get some kind of a response, but instead Krishna's standing like a statue. This is the description in the Krishna book. Completely non-responsive, and Lord Brahma is getting mental about this.
So when Brahma ji saw that Bhagavan Krishna is in full form, nishkriya, shant, nothing is working. तो वो और विमोहित हो गए कि उनको अपनी प्रार्थनाओं से वो सोच रहे थे कि वो क्षमा प्राप्त कर लेंगे लेकिन जब भगवान कृष्ण ने कुछ भी कार्य नहीं किए कुछ भी उन्होंने निष्क्रियता ही बनाई रखी तो वो और विमोहित हो गए।
Again he was confused because he's offering these prayers trying to get forgiveness, trying to soften up Krishna, so to speak, but because Krishna is not responding at all, just standing like a statue, then he's getting mental. He's thinking, my God, you know, is he angry at me? Or does he not understand what I'm saying? Or what's going on here? You know, so again, he's bewildered, you see, because he can't understand why Krishna is standing like a statue and not acknowledging his prayers. That's irregular. Normally, Lord Vishnu acknowledges prayers instantly. But Krishna is standing like a statue. That's the big, big difference. So then Lord Brahma becomes, again, very worried actually.
So Brahma ji bahut hi chintit ho gaye ki Bhagwan Krishna bilkul bhi unke uttar nahi de rahe hain, unki prarthnaon ke liye kuch bhi unko swikar nahi kar rahe hain, bilkul ek murti ke saman khade hain. To wo to kshama yachna karna chah rahe the, lekin ab unko aisa वो खड़े ही रहे भगवान कृष्ण तो इसीलिए वो बहुत ही दुखी हैं, चिंतित हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या भगवान उसे गुस्सा है या क्या वो समझ नहीं रहे जो मैं कह रहा हूँ तो मतलब इस प्रकार से बहुत चिंतित हैं।
On the other hand, you know the pastime, King Indra also made an ass out of himself when he tried to send the Samvartaka cloud, tried to kill the inhabitants of Vrindavan, very demoniac for a devotee. He was King Indra as a devotee, but he became demoniac out of false pride. He tried to kill the inhabitants of Vrindavan by drowning them. You know, this is very demoniac.
और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इंद्र जो कि पूरे इस स्वर्ग के राजा हैं, उन्होंने भी अपने आप अपनी मूर्खता प्रदर्शित की भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वृंदावन वासियों को बाढ़ में डुबोकर उन्होंने प्रलय के जो संवर्तक बादल हैं उनको केवल वृंदावन के ऊपर भेज दिया उसको डुबोने के लिए। तो ये बहुत ही आसुरी कार्य किया उन्होंने अपने झूठे अहंकार के कारण।
So Krishna, you know the story, lifted Govardhan Hill with his baby finger and protected all the residents of Braj in such a way they were undisturbed for about a week, undisturbed by the mischief of Lord Indra. They were undisturbed, they were not hungry, they were not thirsty, you see.
तो हम पर हम जानते हैं कि कथा में क्या होता है कि भगवान कृष्ण जो कि बहुत ही छोटे हैं बालक हैं उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे एक हफ्ते तक वृंदावन वासियों को सभी प्रकार के कष्टों से बिल्कुल शांति मिल गई। उनको ना तो प्यास लगी ना भूख सताई तो इस प्रकार से बड़ा आनंद हुआ।
So when Indra realized that he had just made an ass out of himself, and then when he realized he had just committed Mahaparad, he also offered his Dhanaparnads and elaborate prayers to the same little boy Krishna, you see. He also offered elaborate prayers, his Dhanaparnams. He also had tears in his eyes, and his elephant also filling up that lake next to Govardhan Hill with the tears, you see.
तो जब इंद्र को ये समझ में आया कि उसने भी बहुत महाअपराध कर दिया है और उन्हें बहुत बड़ी मूर्खता की है तो वो भी बहुत ही प्रायश्चित और पश्चाताप से भर गए और शर्मिंदा होकर भगवान कृष्ण के पास आए, दंडवत प्रणाम किया, अश्रु उनके भी नेत्रों से बह रहे थे। तो उन्होंने भी ऐसा भगवान से प्रार्थनाएं की, उनको उनसे क्षमा याचना की।
But in this case, Krishna was not, you know, the word used in chemistry, inert. Krishna was not inert. Krishna was not non-reactive. He did react to the prayers of Indra, and he showed that he was accepting. He demonstrated by his demeanor, you know, that he was accepting the prayers for forgiveness from Indra. So different mood. Krishna showed a different mood to Indra than he did to Lord Brahma. Very curious, and you have to ask the question, why? Why, you know, they both committed offense, then why is he reacting differently to Indra than he is to Lord Brahma? Important question, don't you think?
लेकिन भगवान कृष्ण ने इंद्र को जब इंद्र उनसे क्षमा याचना की प्रार्थनाएं कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे और अश्रु प्रवाह भी कर रहे थे तो उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करा और अपने 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 भाव भाव से उन्होंने उनको एक प्रकार से क्षमा कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से अलग व्यवहार किया और इंद्र से अलग व्यवहार किया, यद्यपि दोनों ने ही भगवान के प्रति महा अपराध किया था। तो हमें ये प्रश्न कोई पूछ सकता है कि ऐसा भगवान का अलग अलग व्यवहार क्यों हुआ?
This is an important question, don't you think?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या आपको ऐसा लगता है?
Do you understand what the question is?
आप प्रश्न समझ पा रहे हैं?
What is the question?
प्रश्न क्या है? The answer, जो उत्तर दे रहे हैं, तो जी कह रहे हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी और इंद्र से अलग अलग व्यवहार क्यों किया?
Yeah, why was Krishna responding differently? They both made Mahaparad. Why did Krishna respond differently to Indra than he did to Lord Brahma? This is the question.
तो ये प्रश्न है कि यद्यपि दोनों ने ही, ब्रह्मा जी इंद्र दोनों ने ही बहुत बड़ा महा अपराध किया भगवान कृष्ण के प्रति, लेकिन कृष्ण दोनों के प्रति अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, तो क्यों? ये है प्रश्न।
The answer is because Indra is a Sakama devotee. That means he's saturated with material desires. He's lusty. That's why his body is covered with eyes. It's a long story. Due to lust, you know, and he's always having lots of sex. He's always surrounded by apsaras that are described as being heavenly prostitutes and dancers And O is drinking intoxicating liquors and has these big, big armies and so much opulence and all that. So he's Sakama devotee. That is, he considered a materialistic devotee. He is, King Indra is never counted amongst the pure devotees. Never.
तो इसका उत्तर ये है कि जो जो इंद्र हैं स्वर्ग के राजा वो एक सकाम भक्त हैं उनमें काम वासना है वो हमेशा अवसराओं से घिरे रहते हैं जिनको बताया जाता है कि वो स्वर्ग के वैश्याएं हैं तो इस प्रकार से उनके पूरे शरीर में आंखें ही आंखें हैं तो इसकी बहुत बड़ी कथा है तो वो सकाम भक्त हैं और हमेशा नशा भी करते हैं स्वर्ग के नशीले पदार्थों को
So it's not so surprising that a materialistic devotee would make a stupid mistake. That's to be understood. Those that are not pure devotees are going to make stupid mistakes while carrying out their duties.
तो ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है कि एक सकाम भक्त जो भौतिक धरातल पे है वो गलती करेगा अपने कर्तव्यों के करते हुए गलती करेगा तो ये किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं है क्योंकि वो उसके अंदर सकाम भावनाएं हैं
On the other hand, Lord Brahma is in a completely different category. Lord Brahma is not a Sakama devotee.
दूसरी ओर ब्रह्मा जी बिल्कुल दूसरी श्रेणी में हैं। वो सकाम भक्त नहीं है
He's not a materialistic devotee.
वो भौतिकतावादी भक्त नहीं है
He is the guru of the universe. That's a very guru of the universe, and very specifically, is the guru of the supreme guru of all the devas. In the Bhagavatam, it's very clear that he is the chief guru beyond Brihaspati. Lord Brahma is the chief guru of all the devas. He's the chief guru of the entire universe. On what basis is he making a stupid mistake? This is the point. On what basis is the head acharya of the universe committing an aparad? That's the difference. He is big, big guru, big, big, big shot. You know, big acharya. And whereas Indra is a little guy in comparison, he's a materialist in comparison.
क्योंकि ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के गुरु ऐसे गुरु हैं वो यदि वो यहाँ तक कि जो स्वर्ग के निवासी बृहस्पति जिनके गुरु हैं उनके भी गुरु हैं भागवत में बताया जाता है कि वो सभी जीवों के जो ब्रह्मांड में हैं उनके गुरु हैं तो उनसे इस प्रकार के गलती करना बिल्कुल भी उनसे ये उम्मीद नहीं थी तो उन्होंने किस आधार पे ऐसी गलती की जो इंद्र तो भौतिक हैं उनके समक्ष इंद्र का कोई तुलना नहीं है जो ब्रह्मा जी तो आचार्य हैं तो उन्होंने ऐसा कैसे गलती कर दी
When Prahlad Maharaj is describing even Lord Brahma as one of the most material nature, he may be describing other Brahmas also, you see.
जब प्रहलाद महाराज ऐसा बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी सारे भौतिक गुणों के वशीभूत हैं, तो वो दूसरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी के बारे में भी हो सकता है बोल रहे हैं।
But here we've given some explanation of the false pride of Lord Brahma. How he was also subject to false ego, although mixed with this yoga maya. So that is very complicated. It's a complicated pastime.
परंतु यहाँ पे भी हमने कुछ इसका विवरण दिया है, कुछ समझाया है कि कैसे ब्रह्मा जी छोटे अहंकार से प्रभावित हुए. लेकिन ये लीला बहुत गहरी है. तो इसका.
We'll stop there. Anybody have any questions?
हम यहाँ पे विराम देंगे. किसी का कोई प्रश्न है?
Yes, Prabhu.
Maharaj, you said that Brahma is sometimes a pure devotee and sometimes not. So doesn't pure devotee mean like being pure for all times? If someone acts deviatingly, even for a moment, I wonder if he could be classified as a pure devotee.
By the question, so they can understand.
तो प्रभु जी का प्रश्न है कि ब्रह्मा जी एक शुद्ध भक्त हैं, कभी हैं और कभी नहीं हैं, ऐसा महाराज ने बताया सब अपने प्रवचन में। तो इन्होंने पूछा कि एक शुद्ध भक्त तो हमेशा ही शुद्ध भक्त रहता है, अगर वो एक क्षण के लिए भी शुद्ध नहीं है तो उसे शुद्ध भक्त नहीं कह सकते, तो इन दोनों बातों में क्या समझा जाए?
By the will of the Lord, Krishna can influence his devotee in any way he wants.
क्योंकि इसका उत्तर यह है कि भगवान कृष्ण अपने अपने इच्छा के अनुसार अपने भक्त को किसी प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं।
When Krishna asked Lord Brahma to descend for Gaura Lila, Lord Brahma was reluctant.
जब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को गौर लीला के लिए अवतार लेने के लिए बोला तो ब्रह्मा जी इसके प्रति कुछ रुका रुक रहे थे, हिचकिचा रहे थे।
It'd be very nice to come down and participate in your pastimes of this golden avatar, but I am a little afraid to do that because I'm afraid I'll again make Maha Aparada the way I did last time. This was his concern, what he expressed to Krishna, when Krishna asked him to descend into Gaura Lila. You see, and Lord Brahma says, well, I don't know, you know, I don't want to make the same mistake. I don't want to get puffed up the way I did before. He said this to Krishna.
So Brahma ji ne kaha ki ye to bahut hi achhi baat hai ki main aapke sunahre avtar mein aapki leelaon mein आप ये सौभाग्य है कि आप मुझे इसमें भाग लेने के लिए मौका दे रहे हैं, लेकिन मुझे ये डर है कि पहले की तरह मैं आपके प्रति महा अपराध ना कर दूं, तो इसीलिए वो हिचकिचा रहे थे।
कृष्ण said, "Don't worry, I'll make special arrangement. I'm going to put you in a Muslim body, and so you won't be able to get puffed up because you will be always." Not able to even enter into the temple of Jagannath Puri, you know. So, you know, you don't have to worry because I'm going to put you in this humble position, you see. So you'll be, by force, you'll be automatically humbled by being put in this low birth, you see.
So Bhagavan Krishna ne kaha ki aap iske bare mein chintit na ho, kyunki main aapke liye ek vishesh vyavastha karunga. Main aapko ek Muslim परिवार में जन्म दूंगा, मुस्लिम शरीर दूंगा, जिससे कि आपको हमेशा एक विनम्र स्थिति में रहोगे कि जगन्नाथ जी के मंदिर में भी आप प्रवेश नहीं कर पाओगे और आप इस प्रकार से कभी भी भूलोगे नहीं।
So how Krishna handles his exalted devotees is very mysterious. You can't understand with a mundane mind. That's the problem.
तो कैसे भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, ये बहुत ही गूढ़ विषय है, तो हम इसको अपने भौतिक मन से नहीं समझ सकते।
An example would be Bhaktivinoda Thakur or even Srila Prabhupada himself.
इसका उदाहरण श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी हैं, या आप श्रीला प्रभुपाद जी को भी देख सकते हैं इस उदाहरण से।
These are Nityasiddha devotees, residents of Braj, eternal residents.
श्रीला प्रभुपाद एक नित्य सिद्ध भक्त हैं, ब्रज के निवासी हैं।
Externally speaking, Srila Bhaktivinoda Thakur suffered greatly. He had, I think, for a couple of months, scarlet fever, and he almost died.
बाहरी दृष्टि से हम देख सकते हैं कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी भी, जो कि वो भी नित्य सिद्ध भक्त हैं, लेकिन वो भी दो महीने तक उनको इतना कड़ा बुखार आया कि वो बिल्कुल मरणासन हो गए।
That appears to be the influence of the material energy.
तो ऐसा लग सकता है कि वो भौतिक शक्ति से प्रभावित हो रहे हैं।
But the word is appears because the pure devotee cannot be under the influence of material energy. But still, externally he had to suffer, and that way was scarlet fever. Srila Prabhupada had to suffer with so many health conditions and multiple heart attacks. Krishna will do this.
और हम देख सकते हैं यद्यपि वो शुद्ध भक्त तो कभी भी भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते, तो ये इसीलिए इसको समझ पाना कठिन है। और प्रभुपाद जी भी बहुत सारे अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से घिरे रहते थे, तो हम देख सकते हैं कि कृष्ण कैसे उनसे आदान प्रदान करते हैं, इसको समझना बहुत कठिन है।
What's your question? original Gama boys were playing with Krishna undisturbed in another location as if nothing happened.
वास्तविक ग्वाल बाल और बछड़े थे वो भगवान कृष्ण के साथ किसी दूसरी स्थान पे खेल रहे थे कि जैसे कि कुछ भी ना हुआ.
So the original cow boys and cows would be unaware that anything weird and irregular was going on. They would be unaware of it, of this other mystic show going on by Krishna's energy. They would be unaware that in another, almost like a duplicate Raj, so to speak, in another realm, they would be carrying on their pastimes undisturbed in a duplicate setting, you see. That's why Krishna's was super mystic power could create a duplicate Raj for a while, just so they could carry on their undisturbed pastimes. That's what the point of this pastime, a super mystic power. It could create such a massive show that Lord Brahma was humbled by it. He could understand what was going on. In the end, he could understand. That's why he was so embarrassed.
तो ब्रह्मा जी तो भगवान श्री कृष्ण के जो वास्तविक ग्वाल बाल थे उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति के द्वारा एक और प्रज बना दिया जिससे कि वो वहाँ पे अपनी लीलाएं कर सकें. और इस पूरे की पूरी लीला को इतना बहुत ज़्यादा योग गुप्त देख सकते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने बहुत ही बड़ा इसमें अपना योग शक्ति का प्रदर्शन किया जिससे कि ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से विनम्र हो गए.
His Holiness Bhakti Madhuri Govind Sai Maharaj ki.